Well, this wasn't supposed to happen. Anyway, moving on, continuing with the boring template. I'll be calling her back because I know you loved her more than me. Also, how much of a girl's voice can do wonders. Can you imagine? Last episode got 23 streams. 20 fucking 3. That's more than her and mine friends combined. So you know something is fishy. So ladies and dogs, please welcome the girl whose last name is still a mystery to pronounce, Miss Rubani M.
Thank you so much. I hope you won't disappoint me this time.
Yeah. Welcome back after ruining my life. Like, aaj ka koi aise basic topic nahi hai. It's just, I'll be just talking to you and that's it. Usse hi kuch na kuch nikalenge. It's all about you now. ठीक है, लाइमलाइट अब तुझ पे आ चुकी है.
थैंक्स.
हाँ, सो सबसे पहले लाइक लेट्स टॉक अबाउट डांस बिकॉज दैट्स योर फोर्टे. सो उसका ही है. सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट?
सो आई एम वेरी एम्बैरस्ड कि ये ऐसे स्टार्ट हुआ, बट कहीं ना कहीं मुझे ये ट्रूथ एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं अपने में ना इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट इट्स ओके, मेरे को नहीं पता था तब. ठीक है, तो दिस ऑल स्टार्टेड विद रियलिटी शोज. जी, तो लाइक ओके, सो आई ऑलवेज यूज टू लाइक डांसिंग. जैसे होता है ना, ऐसे डाल देते हैं बच्चों को हमें कहीं पे, जैसे डांस क्लासेस में थोड़े बहुत वहां पे कजरारे करके आ जाते हैं. उतना वाला करती थी तब मैं, बट तब आई डिडंट थिंक एनीथिंग ऑफ इट बिकॉज ऑब्वियसली तो छोटी थी एंड एक इतना अच्छा करती नहीं थी कि स्टैंड आउट हूँ. हाँ, तो मतलब आज तक पहले कुछ इतना नहीं था. देन व्हाट हैपेंड इज कि मैंने देखना शुरू किया डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 2, जो आई थिंक हम में से सबने देखा है. ठीक है, वो जो वो वाला सीजन था जिसमें ये फैज सौम्या ये सब थे.
ओके,
हाँ, ठीक है. तो अब मेरे को मजा आता था देखने में, बिकॉज मेरे को डांसिंग ओवरऑल तो पसंद नहीं थी, बस वो बच्चों वाला शो था तो ऐसे देखने में ज्यादा अच्छा लगता था. तो मैं बस उनको देख के कॉपी करना शुरू हो गई उन्हें. लाइक वो जो भी चीजें करते थे वो चीजें करने लग गई. एंड आई थिंक दैट्स द रीजन कि मेरी डांस की जो परसेप्शन पहले थी वो इतनी ज्यादा गलत थी, क्योंकि मैंने वहीं से कॉपी किया. बट देन इट वाज इन माय फॉल्ट ईदर, बिकॉज जहाँ पे मैं रहती थी आई डोंट नो, लोगों को पता है कि नहीं कि मैं अमृतसर से हूँ. तो वहाँ पे कुछ नहीं था. और क्या कहते हैं, ये तो अमृतसर वाली बात है ना, मैं किसी को बताती हूँ ना वो थोड़ा शॉक होते हैं. तो एनीवे अमृतसर इज लाइक, तो मेरे को इस चीज के बारे में बहुत सुनाया जाता है, बिकॉज अमृतसर इज लाइक पंजाब का मतलब ऐसे पूरा वो है यार, वहाँ पे सारे पंजाबी वैसे बड़े हैं, वहाँ का सारा पंजाबी खाना वहीं का तो फेमस है. वो लाइक स्टिल एनीवे मेरे को उससे तो फर्क नहीं पड़ता है. तो अमृतसर में इतनी डांस क्लासेस थी नहीं. ठीक है, जो थी वो ऐसी जो फालतू सी होती है ना, एरोबिक्स करा रहे होते हैं डांस के नाम पे, वैसी सी थी. तो करी मैंने ज्वाइन, बट उसका कुछ हुआ नहीं क्योंकि वहां पे कुछ अच्छा नहीं होता था. तो फिर मैंने गिव अप कर दिया कि भाई मेरी जिंदगी में कभी भी सही क्लासेस नहीं आने वाली. तो उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ में आ गई. बट चंडीगढ़ में भी यही सीन हुआ कि कोई छोड़ नहीं सकता, ये नहीं कर सकता. तो चंडीगढ़ में भी मैं कुछ कर नहीं पाई. और जब कर भी पाई तो मेरे को रियलाइज हुआ कि चंडीगढ़ में कुछ नहीं है, मतलब है बट लाइक वो असली ट्रेनिंग ही है यहाँ पे. मतलब यहाँ पे वो वही टिपिकल बॉलीवुड एंड ये सब कराए. तो बेसिकली रियलिटी शोज से शुरू हुआ. फिर उसके बाद मैंने जब अपने आप रिसर्च करनी शुरू की, मैं यूट्यूब पे पहुंची, मैंने बाहर के रियलिटी शोज देखे. आई मीन वो भी थोड़े से ओवररेटेड होते हैं, But compared to the Indian reality shows, obviously
तो
they are much much better.
हम्म,
तो हाँ मतलब धीरे धीरे करके बढ़िया ये दोनों.
आर्टिस्टिक डांस स्टूडियो में कितना टाइम गुजारा?
आर्टिस्टिक डांस स्टूडियो ये
ओके,
ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, ये बस मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे घर के बहुत ही ज्यादा पास था, एकदम नया नया स्टूडियो था. मैं कर चुकी थी काफी स्टूडियो ट्राई और हर एक पे गिव अप कर चुकी थी, तो मैंने सोचा
हाँ,
ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं पास
कमोन
ही है
यार,
घर
उसने
के,
तुझे यूट्यूब पे फेमस किया
फेमस ही है तो सुन.
है।
तो ठीक है, तो मैं गई पूछने की क्या सीन है. तो
हाँ,
पहले तो जाकर मेरे को पता चलता है कि अभी तक उनके एडवांस बैच में कोई स्टूडेंट ही नहीं है.
ओके,
आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट देयर. ठीक
हाँ
है, तो पहले मुझे अनकम्फर्टेबल, क्योंकि जैसे कभी मैंने प्राइवेट, वो थोड़ा प्राइवेट क्लासेस ही हो गई ना,
हाँ
मतलब फॉर लाइक 2 वीक्स मैं अकेली
हाँ
जाती थी वहां पे, तो वैसे कराते थे मेरे को थोड़ा बहुत वर्कआउट और थोड़ी बहुत कोरियोग्राफी एक्सेस वगैरह टाइप. तो ठीक है, मतलब इतना कोई सही नहीं था, बट आई मैंने मतलब ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि पास है और ऐसे
हाँ
अकेले हूँ, इंडिविजुअल मतलब उसी पर्सनल अटेंशन मिल रही है, क्या
हाँ
जाता है, सस्ती
हाँ
भी थी. ठीक है, टाइम पास हो रहा है. फिर बस वहां पे धीरे धीरे दो स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लिए, हम 3 का बैच हो
हाँ
गए. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वहां पे इंस्ट्रक्टर बना दिया
ओ
आंटीज वाले बैच का.
भाई,
हाँ,
हाँ हाँ हाँ
तो
हाँ
मैं उनको सिखाना शुरू किया. तो पहले तो बड़ी वियर्ड सी फीलिंग थी क्योंकि
हाँ
मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं आता है,
हाँ
उन
हाँ
आंटीज को मेरे को रियलाइज नहीं होने देना, लेकिन उनको लगना चाहिए कि मैं बापू डांसिंग की.
हाँ
ठीक है, और वो चीज मैं करती थी क्योंकि वो तो इम्प्रेस हो जाते थे, मैं कोई स्टंट फ्लिप मार दू, कार्टून मार दू,
हाँ
तो उतने में इम्प्रेस हो जाते थे, उनको क्या पता कि ये तो जिम्नास्टिक है. ठीक है, तो बस ऐसे धीरे धीरे शुरू हुआ. तो अब मैं उस टाइप की बन गई, आई बिलीव इन ट्रेनिंग, आई डोंट बिलीव इन यू नो जस्ट डांसिंग टू कोरियोग्राफी. देयर इज अ डिफरेंस कि आप अच्छे से ट्रेनिंग करो, आप प्रॉपर फाउंडेशन सीखो, आप समझो कि वो चीज है क्या. जस्ट कॉपीइंग कोरियोग्राफी इज नॉट डांसिंग. ठीक है, तो मैंने शुरू किया, तो आई आस्क देम कि आपको कौन सी स्टाइल्स करने हैं, तो हिप हॉप भांगड़ा ये सब हुआ. तो मतलब आई स्टार्टेड विद भांगड़ा, कि ठीक है भांगड़ा में ज्यादा इंटरेस्ट है, सबको पंजाबी गाने ज्यादा पसंद है तो भांगड़ा पे शुरू कर लेते हैं. मैंने घर पे खुद भांगड़ा के सबसे बेसिक जो स्टेप्स होते हैं वो सीखे विद देयर नेम, उसकी प्रैक्टिस की क्योंकि मैं वहां पे ऐसे बिगिनर जैसी थोड़ी दिख सकती हूँ. तो मैंने वो सीखे, मैं जाके उन्हें वो बेसिक स्टेप्स कराती थी, तो मैं हिप हॉप के बेसिक स्टेप्स कराती थी. अब मेरे को बता, अच्छी चीज नहीं है ये. उन आंटीज ने पता क्या बोला, कहते कि हमें ये सब नहीं करना है, हमें तो बस फिट होना है जी, आप भांगड़ा ही कराओ. मैं कहती भांगड़ा है, कहते असली भांगड़ा ही है जो आप करते हो वो नकली भांगड़ा है. बट ठीक है, कस्टमर तो कस्टमर है, उस वक्त वो मेरे कस्टमर थे. तो आई लाइक ओके ठीक है, फिर मैं बनाती हूँ, फिर आप वही करो, फिर आप
हाँ
टूटे हो. तो बस मैंने बनाई कोरियोग्राफी,
हाँ
वैसे मेरी पहली कोरियोग्राफी ऐसे फेमस थी होगी,
हाँ
यूट्यूब पे चली गई. हाँ,
हाँ
बस तो धीरे धीरे करके यही होता रहा. फिर उसके बाद मैं खुद फेडअप आ गई क्योंकि वही सेम चीजें हुई जा रही थी. वो मेरे को उन्होंने बात की थी एक बैच की और मेरे को पैसे देते थे एक बैच के, बट वो एंड ऑफ द डे क्या होता था, वो आलस खा जाते थे और मैं 2-3 बैच बैचेस ले सिखाती थी
ओ भाई,
और फिर उसके बाद मैं सीखती भी थी एडवांस बैच में. तो
सारा
लाइक
टाइम इधर
काफी,
निकल जाता होगा उधर।
अरे आई रिमेम्बर एकदम, ये 12th की स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात है. तो मतलब ऐसे होता था कि मैं स्कूल जाती थी, आती थी, ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन से सीधा डांस क्लास जाती थी क्योंकि टाइम नहीं होता था, तो सीधा आंसर जाती थी, सिखाती थी, फिर सिखाती थी, फिर सीखती थी, फिर 9-10 बजे घर आती थी, फिर खाती थी, फिर थोड़ा घर वालों के पास जाती थी कि हाँ भाई यही हूँ मैं, यही रहती हूँ अभी भी, फिर उसके बाद सोती थी, फिर 3-4 बजे उठ के पढ़ती थी.
सही राम।
तो सबके लिए स्ट्रेसफुल ही रही है ना फिर.
एग्जैक्टली, और तूने तो इवेंचुअली 12th में सुबह 5 बजे वाली ट्यूशन भी लगाई थी।
बिल्कुल,
हाँ
उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ था. मैंने जिंदगी में बहुत यूजलेस चीजें की है जिनका कोई फायदा नहीं हुआ है, जैसे कि वो ट्यूशन. मैं उठती थी यार, मैं रोज उठती थी, कोई फायदा नहीं हुआ, एंड में उसको भी निकालना ही पड़ा.
नाइस। ओके, सो लाइक एक क्वेश्चन ये है, ये मैं पूछना चाहता था जब बात चल रही थी, लाइक अब के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑब्वियसली आई नो द आंसर, बट आई वांट टू यू नो, एक पूरा एक मेरे को तेरा एक परसेप्शन चाहिए उसका. डू यू लाइक रियलिटी शोज नाउ?
सी मतलब हाँ, मेरी डांसिंग अगर मैं सीरियसली मैंने लेना शुरू किया था तो वो यही विश से था कि भाई मेरे को DID लेके मास्टर्स पे जाना है.
ओके.
और उस वक्त मैं 10-11 साल की थी, तो मेरे को ये टेंशन रहती थी कि उसकी एज लिमिट है 13 साल की और मैं हो गई हूँ 10-11 साल की. मेरे पास टाइम बहुत कम है, मम्मी पापा मेरे को लेके चलो. और करती थी मैं बेकार ऐसे, तो फिर टेम्प्रेरी के नाम पे रोती रोती पिटती रहती थी. करना मेरे को आता नहीं था, एक्सपीरियंस जिद है कि गाना है. तो बट फिर हमें समय से क्लासेस तो चलो मिली नहीं, तो कुछ ऐसे हो नहीं पाया. तो बड़ा रोई कि मैं DID मास्टर से नहीं जा पाई. फिर उसके बाद भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके बाद भी मेरे को रहा है एंड मैं गई हूँ. आई हैव बिन टू DID के ऑडिशन, आई हैव बिन टू वो कौन सा आता है डांस दीवाने, उसके ऑडिशन. ठीक है, पर एक बार से छोटे मोटे और गई हूँ, जैसे छोटे मोटे नकली से नहीं होते, नकली चैनल पे होते हैं लोग,
हाँ, जम के नाच
तो उन
कंपटीशन.
हाँ. तो मतलब वो एक्सपीरियंस फिर भी डिफरेंट है. मैं रियलिटी शोज की अगर बात करूं तो वहां पे ना बहुत ही गंदा गंदी नेगेटिविटी होती है वहां पे. तो मैं पहला ऑडिशन था, तो मैं रियली नर्वस, ठीक है. तो मैंने ऐसे रूटीन रेडी कर रखी थी, मैं गई वहां पे, भीड़ है, एक्सपेक्टेड था ठीक है भीड़ तो होगी. फिर उसकी तो ना बड़ी रूडली बात कर रहे थे वो लोगों से, बहुत ज्यादा रूडली, ठीक है. फिर उसके बाद ऐसे वेटिंग एरिया में बस ऐसे ऐसे डरा रहे हैं सोच में ऐसे, मतलब ऐसे होता है ना कि बंदा बात ऐसे करता है कि आपको ऐसे लग जाता है कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है. तो वैसी वाली फीलिंग आ रही थी. मतलब आई रिमेम्बर 5 घंटे मैंने वहां पे वेट की थी. अगले दिन मेरा मैथ का एग्जाम था फाइनल 11th में, ठीक है. तो बट मेरे को था कि भाई नहीं, मैं तो जाऊंगी, मैं तो करूंगी. बाद में लग गया मेरे को पता कि कुछ नहीं होता. आई एम नॉट सेइंग कि आई शुड हैव बीन सिलेक्टेड, बिकॉज आई नो कि आई शुड नॉट हैव बीन सिलेक्टेड. मैं उस लेवल, अभी भी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उस टाइम पे भी कुछ नहीं थी. मैं अभी भी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि हाँ मैं रियलिटी शो पे जाऊंगी तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी. बट द थिंग इज कि रियलिटी शोज का जो इंडिया में कॉन्सेप्ट है ना,
बहुत बेकार
वो
है,
बहुत
बहुत
ज्यादा फक्ड
ज्यादा
अप है. मतलब सी, आई नो अ लॉट ऑफ डांसर्स इन इंडिया जो गए हैं रियलिटी शोज पे एंड वो एक्चुअली बहुत अच्छे डांसर्स हैं, ठीक है. आई वोंट नेम देम बिकॉज आई डोंट नो, लोगों को सब पता नहीं होगा, सो लाइक लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. बट मैंने उनकी असली डांसिंग ना रियलिटी शो के बाद देखी है, नॉट बिकॉज वो उस शो पे जाके ग्रो हुए हैं, बट बिकॉज बाहर आके उन्हें वो रिकग्निशन मिली कि वो असली डांसिंग लोगों को दिखा सकते हैं, नॉट ऑन टेलीविजन.
यार वो
जो
भी होता है
टेलीविजन
ना,
पे करते थे ना.
वो भी होता है ना कि लाइक जैसे पहले वो थे, मतलब ऐसे जैसे वो होते हैं ना, मेरा मेरी माँ गरीब है, मेरा बाप, वैसा करके वो आए, चलो ठीक है वो. और उन्होंने एक्चुअली जैसे ही उन्होंने वहां पर डांस किया, वहां पर वो रिकग्नाइज हुए, उसके बाद दे गॉट द ट्रेनिंग, उसके बाद फिर वो वहां से ग्रो होना शुरू हुए ना. एंड उसके
बिल्कुल
बाद वो ही हुआ
जो
कि हाँ,
हाँ
मतलब नाउ दे कैन एक्चुअली डांस, जो रियलिटी में
यस
डांस होता है. हाँ.
बिल्कुल. मतलब सी, रियलिटी शोज पे बहुत लोग देखते हैं, मेरे को पता है अभी भी, लाइक पहले से ऑब्वियसली कम हुई है, बट पहले बहुत लोग देखते थे, बहुत ज्यादा, एंड अभी भी देखते हैं यार. सारी माए देखती हैं, सारी माए, सारी मेड, सब देखती हैं, अंकल आंटिया भी देखते हैं, मेरे नानी नानी खुद देखते हैं, मेरे को देख के बता रहे होते कि उसने ये किया, उसने ये किया. बट मतलब यार वो ना रियल टैलेंट नहीं होता है. अगेन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, कुछ लोग होते हैं वहां पे जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बट वहां पे उनका रियल टैलेंट नहीं दिखता है. वहां पे उनका वो स्टेज टैलेंट दिखता है, जितना वो दिखाना चाहते हैं, जिस वे में वो दिखाना चाहते हैं उतना ही दिखता है.
प्लस यार काफी प्रिटेंशियस चीजें भी होती है ना, जैसे
बहुत
जैसे रियलिटी शोज का यही कंसेप्ट है. जैसे एक बंदे ने डांस किया कि आई एम गोइंग टू डेडिकेट दिस डांस टू माय मदर, ठीक है, और उसने कर दिया, सबको रुला दिया. हालांकि अगला
बिल्कुल
10 बार तक अपनी माँ के ऊपर डांस करता रहेगा, मैंने ये हाँ
एग्जैक्टली
और सारा गुरु लाता रहेगा 10 10 10, तो मतलब इतना ज्यादा प्रिटेंशियस हो जाता है ना, ऊपर से वो
बहुत
इतना
ज्यादा
म्यूजिक दे देते हैं कि लो भाई तुम इमोशन में रो रो।
एग्जैक्टली थिंग इज कि ये चीज बहुत ज्यादा स्वीट है कि आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो और आप उसको किसी के लिए डेडिकेट करो, ठीक है। आई वुड लव टू डू इट समटाइम, दैट इज नॉट प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस वो तब हो जाता है ना बिकॉज वो स्टेज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो करते ही इसीलिए कि भाई कमिंग अप में ये दिखाएंगे कि ये रोना धोना, फिर वही अगले 5 एक्ट के पहले आता रहता है, फिर वो एंड में दिखाते हैं कोई जाए ना रोना धोना देख के जाए।
और वो भी बोलते हैं कि आपको हम दिखाएंगे कल, क्योंकि सैटरडे संडे दो दिन आना होता है।
मतलब उन्होंने बस रखना है ना उनको क्लियर फाइंडर पे, और आंसर रहती भी है।
देखा था ना मैंने वो क्या केड़ा शो था, इंडियाज गॉट टैलेंट था वो, था नहीं 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 वो एक शो नहीं शुरू हुआ था वो रैप वाला समथिंग कोई एक आया था, वो रैप सुनाता था अपने हर एक फैमिली मेंबर को, वो करके जीत गया। वैसे करके जीत गया वो बंदा, ब्रो फिर ना तू बीट पकड़ रहा है ना तू कुछ कर रहा है।
एंड सी नॉट टू बी लाइक मतलब वैसे कि भाई मेरा हार्ट नहीं है, बट जो करते हैं ना ऐसे डेडिकेशन करके, ठीक है अगर मैं डेडिकेट कर रही हूँ किसी के लिए और मैं अगर परफॉर्मेंस में घुस चुकी हूँ तो डेफिनेटली मैं भी शायद रो दूंगी। देर हैव बीन परफॉर्मेंसेज जब मैं करते करते रोई हूँ, चाहे वो डेडिकेटेड भी नहीं थी, ठीक है। तो अगर वो बंदा रो रहा है दैट इज स्टिल अंडरस्टैंडेबल,
बाकी
पूरी ऑडियंस कैसे रो सकती है यार, सारे जजेस कैसे रो सकते हैं,
सारे
इतना नकली रोना करते हैं। एक तो वो लोग,
एक बंदा तो बैठा रहे जो ऐसे स्थिर हो जो लोगों को संभालने के लिए, नहीं वो भी रो रहा है उधर से एंकर रोते हुए आ रहे हैं।
एग्जैक्टली और एक ये चीज देखिए, ये चीज नोटिस की है, जो जजेस का पैनल होता है उसमें से ना बड़े ऐसे उन्होंने वो बनाया होता है कि एक ऐसा होता है जिसका मजाक उड़ता है, एक होता है जो हमेशा रोता है, और एक होता है एक्सपर्ट।
एग्जैक्टली
ये हर शो में होता है ऐसा।
अरे एक मतलब एक तो वो होता है ना जो पता नहीं वो क्यों है, क्योंकि जैसे डांस रियलिटी शो है ना उसको डांस आता है ना वो कुछ, वो किसी मूवी का डायरेक्टर होता है उसको बस ऐसे ले लिया है,
चेतन
भगत एग्जैक्टली चेतन भगत का। और
वो तो
बड़ा क्रिटिक था वो आदमी,
ऐसे करके तो सब नॉलेज है। और आई रिमेम्बर उसने बहुत बोला था, कॉन्ट्रोवर्शियल था तो बड़ा वायरल हुआ था कि क्या बोल रहे हैं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट हाँ। तो हाँ हम रियलिटी शोज पे थे तो हाँ, एक तो ये ड्रामा वाली बात हो गई। और ना ये चीजें बहुत चलती है यहाँ पे कि जो जज है, ठीक है, उसके नीचे का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके नीचे का कोई स्टूडेंट का स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट के स्टूडेंट का फ्रेंड है, मतलब ये सब करके ना वो पता होता है उन्हें, उन्होंने नंबर नोट कर लिया होता है और वो उसी हिसाब से जज भी करते हैं। तो काफी बार नॉट डिजर्विंग लोग आते हैं। हाँ ये मैंने बहुत देखा है, मैं एक लोकल कंपटीशन पे भी गई थी तो वहाँ पे एक जज था, वो नेम हिम बट एज इफ यू किसी ने सुनना है, बट स्टिल आई वो नेम हिम बिकॉज मैं एक्चुअली उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो उसका स्टूडेंट था, अच्छी परफॉर्मेंस थी यार, अच्छी थी, पक्का थी, बट उससे बेटर लोग थे। अगेन मैं नहीं थी, मैं नहीं थी, मैं खुद बोल रही हूँ मैं नहीं थी, मैं थर्ड भी आना नहीं डिजर्व करती थी, मेरे को कॉन्सोलेशन भी नहीं मिलना चाहिए था। जस्ट सेइंग कि उससे बहुत बेटर लोग थे बट वो सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि जज उसका टीचर था, उसने उसको सिखाया हुआ है। तो जब ये चीजें आप देखते हो ना तो इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि दैट इज नॉट रियल टैलेंट, यू नो, मतलब मैं सिर्फ अपनी लाइफ में रियल टैलेंट के बेसिस पे मे भी शायद आगे ना ही बढ़ पाऊँ, मुझे ये रिलेशन चाहिए, मुझे ये सोशल रिलेशन चाहिए, एंड दैट इज सैड बिकॉज दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी नो। तो मतलब हाँ ये चीजें रियलिटी शो पे भी बहुत होती हैं, हमेशा रियलिटी शो पे अनडिजर्विंग बंदा क्यों जीतता है, इसीलिए तो जीतता है जो सबसे डिजर्विंग होता है हमेशा सेकेंड या थर्ड आता है,
चाहे वो बिग बॉस ही क्यों ना हो।
बिल्कुल बिग बॉस क्यों ना हो, कौन सी तरह बिग बॉस अभी,
नेवर माइंड, आगे बढ़ते हुए यार। नहीं मैं लोगों को बताना नहीं चाहता कि मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन है तो
यार ठीक है जी, बिना सबको पता होता कोई नहीं।
ओके आगे बढ़ते हैं, टेल मी अबाउट द, इसको पीछे रखते हुए रियलिटी शोज के बारे में बहुत हमने बन गए उसके क्रिटिक, हम आगे बढ़ते हैं। कि टेल मी अबाउट कोई फन इंसिडेंट, फन भी या एम्बैरेसिंग कुछ भी ऐसा हुआ हो ऑन स्टेज.
ऑन स्टेज. ओके सो इससे पहले कि लोग मेरे को बहुत ज्यादा जज करें, इवन दो तब भी करेंगे, मैं जस्ट एक वो देना चाहती हूँ कि मैं इंजर्ड थी. ठीक है, आई वॉज अ पार्ट ऑफ माई कॉलेज का डांस सोसाइटी एंड DU डांस सर्किट, अगर लोगों को नहीं पता है तो इट्स हेल. ठीक है, मतलब वो आपको समझते हैं कि आपका फर्स्ट डे है एंड काफी नॉन डांसर्स भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सब थोड़ी डांसेस होते हैं, सब थोड़ी कर रहे होते हैं पहले से. ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फर्स्ट डे आते ही जो अपना फर्स्ट वर्कआउट होता है ना, तो एवरी डे भी वर्कआउट उसमें, तो जो आपका फर्स्ट वर्कआउट होता है ना उसी में भी एक्सपेक्ट कि आप ऐसे 2-3 मिनट प्लैंक करोगे, 30-40 पुशअप मार दोगे, 60 क्रंचेस मारोगे. ठीक है, दिस इज वेयर दिस स्टार्ट. सो यू कैन इमेजिन कि आगे जाते जाते 4-5 महीनों में क्या हाल हो गया था. ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि हर बंदे की बॉडी अलग है. हर बंदे ने अपनी बॉडी को पहले से अलग तरह से ट्रेन कर रखा है, तो दे शुड अंडरस्टैंड कि अगर वो हद से ज्यादा पुश करेंगे ना तो किसी को इंजरी हो सकती है, जैसे कि मेरी हुई और उसकी वजह से मैं अभी तक बहुत ही ज्यादा सफर कर रही हूँ. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. तो मतलब वो ना उनको समझ नहीं है चीजों की, बट वो ऐसे एक्ट करते हैं कि हमें सब पता है. जस्ट बिकॉज वो थर्ड ईयर में आ चुके हैं, उन्होंने 2 साल करे हैं, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, काफी चीजें करनी पड़ती हैं, काफी चीजें सहनी पड़ती हैं, इट इज अ हेल ऑफ अ जर्नी, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम्हें सब पता है डांस के बारे में. इट जस्ट मीन्स कि तुमने डांस सोसाइटी में ऐसे रहे हो 2 साल. ठीक है, तो वो ऐसे समझने लग जाते हैं अपने आप को कि उन्हें सब पता है एंड उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. अगर उन्हें कोई क्वेश्चन कर देना ना, तो आप सही चीज भी बोल रहे हो तो वो आपको सुना देंगे, बुरी तरह से इंसल्ट कर देंगे या सोसाइटी से भी निकाल सकते हैं.
ओके
हाँ, तो मतलब वो इस लेवल का वहां पे ऐसे होता है कि जूनियर जो फर्स्ट ईयर होते हैं ना उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि भाई तुम स्लेव्स हो, तुम्हें जो हम बोलेंगे तुम वो करोगे, तुम आवाज ऊंची की तो तुम्हें काट देंगे. मतलब ऐसे ही होता था, और पनिशमेंट भी ऐसे मिलती होती थी, जैसे कोई लेट आता था, 1 मिनट लेट आता था ना कोई, तो उसको राउंड लगाने को बोलते थे, या आपको जैसे पुशअप बहुत ज्यादा मारने को बोलते थे, या कुछ जैसे एम्बैरेस करते थे तगड़ा वाला. मेरे को पनिशमेंट नहीं मिली कभी, मैं डरती इतना थी. ठीक है, ना वो छुट्टी देते थे कोई. एनीवे इससे ना घुसते हम, तो मैं क्या टू क्वेश्चन क्या था. हाँ, स्टेज पे फटअप. ओके, तो मतलब ऐसे ही मेरे पैरों में कुछ कुछ प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे को रेस्ट नहीं करने दी बिल्कुल, और मैं भी महान, मैं भी बैठ नहीं रही हूँ, मैं भी कर ही जा रही हूँ, पता है मेरे को कि मेरे पैर सूजे पड़े हैं, मैं भी कर ही जा रही हूँ, पुश करना. फिर उससे स्वेलिंग होगी पैरों में बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बढ़ गया कि मतलब मैं चलते वक्त भी अपने ना पैर के इनसाइड पे वेट नहीं डाल पा रही थी. वैसे ना जो बाहर की साइड होती है ना उससे ऐसे ऐसे करके चलती थी लगड़ा के, दोनों पैरों में था. तो हम गए बिच पिलानी फॉर अ कॉम्पिटिशन. तो वहां पे क्या सीन होता था, हम सुबह उठते थे 6-7 बजे. ठीक है, 8-9 बजे प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी, फिर प्रैक्टिस करते रहते थे अराउंड 12 बजे तक. बीच में बस लंच और डिनर के लिए ब्रेक पे जाते थे और वही खा के आते ही करने लग जाते थे. ये भी नहीं कि भाई खाना तो डाइजेस्ट होने दो. ठीक है, 11-12 बजे तक प्रैक्टिस करते थे, फिर कहा जाता था कि देख लो अगर सुबह उठ सकते हो तो हमारे साथ चल लो घूमने, वरना सोने चले जाओ. अब मतलब यार हम इतना दूर आए हैं पिलानी से, हमारा पहला फेस्ट है ऐसे आउट स्टेशन, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि ठीक है हम सोने जा रहे हैं. हमें भी होगा कि भाई कैंपस तो देखे, हम तो नाच ही जा रहे हैं तब से, तो हम भी चल पड़ते थे. मजे आते थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मजे आते थे, काफी मजे करते थे, 3-4 घंटों के मजे होते थे. फिर हम 4-5 बजे सोने जाते थे, फिर से 7-8 बजे उठ जाते थे. रोज हमने 2-2 घंटे की नींद ली है. ठीक है, तो ऐसे बड़ा ही स्ट्रेसफुल सा दिन था मेरे लिए. वो हमारा ऐसे फर्स्ट राउंड था ग्रुप डांस का, और उसी दिन मेरा सोलो का भी ऐसे ट्रायल था. ठीक है, तो पहले वो था ग्रुप डांस, तो उससे पहले वाले दिन आ रिमेम्बर मैं करते करते गिर गई थी क्योंकि मेरे पैर पे मैं वेट नहीं डाल पा रही थी. फिर उसके बाद मेरी रोने वाली शक्ल बन गई थी, तो इन्होंने कहा कि अच्छा बता रही सही में सफर कर दिया, तो कहते चलो ठीक है 5 मिनट के लिए बैठ जाओ बेटा, फिर वापस आ जाना.
ठीक है,
तो 5 मिनट की ब्रेक में मैंने पूरा ऐसे रिकवर कर लिया था. तो हाँ, तो अगले दिन ट्रायल था. तो बेसिकली क्या होता है ना कि ऐसी रूटीन है, तो पहले ऐसे रूटीन है जिसमें बॉयज गर्ल्स इकट्ठे हैं, फिर उसके बाद करते करते गर्ल्स रूटीन थी. तो मैंने ऊपर टी शर्ट डाल रखी थी, नीचे गर्ल्स टॉप डाल रखा था, उसके ऊपर ब्लेजर भी डाल रखा था और वो फर्स्ट रूटीन में था. उसके बाद मुझे साइड पे जाके जो मेरा पार्ट हो गया था, मुझे अपनी कैप उतारनी थी, मुझे अपना ब्लेजर उतारना था, मुझे अपनी ऊपर वाली टी शर्ट उतारनी थी कि मैं गर्ल्स टॉप में हूँ. ठीक है, क्योंकि गर्ल्स टॉप तो जरूरी है, तभी तो हुटिंग होगी. ठीक है, तो और सही बात है, उसी पार्ट में सबसे ज्यादा हुटिंग होती थी क्योंकि लड़कियां क्रॉप टॉप में है. तो अरे स्टेप्स ही ऐसी कराते थे कि भाई हुटिंग मिले उनको, तो बस ये है कि हुटिंग मिल जाए. तो हाँ, तो ये था. मैंने क्या किया, मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस थी अपने माइंड में, ऑब्वियसली इट्स नो एक्सक्यूज, बट मैं ब्लेजर उतार दिया, कैप उतार दी और मैं टी शर्ट में चली गई गर्ल्स रूटीन के लिए. एंड मैं पीछी भी नहीं थी, जैसे सेंटर भी होता है तो जैसे जो सेंटर वाली लड़की थी उसके एकदम लेफ्ट पे थी मैं आगे,
बिल्कुल चमक रहा है
सब सब पिंक ब्लैक वाली टॉप में है और मैं अकेली ब्लैक कलर के टॉप में हूँ. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ मेरे को रियलाइज बहुत बाद में हुआ, स्टेज पे जाके हुआ. ठीक है, और मेरे को बोल रहा था कोई, पता नहीं मैं अलग ही अपने जोन में घुस रखी थी, मैं सुन ही नहीं रही हूँ किसी की बात. वो होता है ना, आप कभी कभी ऐसे बैठते हैं जैसे अलग ही जोन में आ जाते हो, जब स्पेशली जब स्ट्रेस होते हैं फिर आपको टेंशन होती है, आप कुछ मेसअप ना कर दो. मैं कर चुकी थी मेसअप, ये सोचते हो कि मैं मेसअप ना कर दूं. ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद फिर से एक और गर्ल रुकी थी छोटी सी, बट द प्रॉब्लम वॉज कि अब मेरे को एग्जिट दूसरी साइड ऑफ स्टेज पे करना था. अब यहाँ पे तो मैंने देखो किसी ने बोला तो मैंने उतार दिया, मैंने वहीं पे रख दिया वो करके, मेरे को फिर से दूसरी साइड बजाना है जहाँ पे मैं ओरिजिनली थी. और मेरे को टी शर्ट फिर से डाल दी है और मेरी टी शर्ट तो दूसरी साइड में है. तो कोई अपनी ब्लैक प्लेन टी शर्ट ऐसी डाल के आया हुआ था, मैंने वो डाल दी और मैंने फिर आगे की रूटीन उसमें करी. भाई साहब, एक तो ना सीनियर ना आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे जब तक डिस्कशन नहीं होती कि कैसा हुआ परफॉर्मेंस, कुछ नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो उसके बाद मेरा सोलो ट्रायल, मैं गिवअप कर चुकी थी कि भाई मुझसे नहीं होगा. तो सोलो ट्रायल था, उसका भी मेरा मूड नहीं, फिर मैं वही अपने अलग ही माइंड सेट में गई. मैं सोलो के लिए भी स्टेज पे स्लिप हो गई. पहली एंड आखिरी बार मैं कौन कहना चाहती हूँ, मैं स्टेज पे गिरी हूँ, लिटरली अपने गिरी हूँ अपने बम पे करते हुए. और आधी चीजें मैंने करी थी कि इसी डर में कि मैं गिर जाऊंगी अगर मैंने ये किया, तो मैंने लिटरली परफॉर्मेंस किसी को दिखाना भी नहीं चाहती हूँ. इट वाज सो एम्बैरेसिंग
क्योंकि काफी स्लिपरी था एंड ऑल दैट.
हाँ, स्लिपरी था और मैं कम कंटेम्पररी करी थी, मैंने सॉक्स डाली हुई थी.
ओके,
इसलिए गिरी, नॉट कि मतलब मैं मेरे में स्ट्रेंथ नहीं थी उस वक्त, बहुत स्ट्रेंथ थी यार. तो स्ट्रेंथ उन्होंने ला दी थी इतने सारे क्रंचेस रोज करा के. तो आई थिंक एक तो ये स्टेज पे बहुत ही क्रेजी फकअप रहा है मेरा. फिर एक बार ऐसे होता है ना फंक्शन इंडिपेंडेंस डे राइट, तो उसमें ना ऐसे कुछ ऐसे गाना था कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो गुरबानी. ठीक है, तो उसमें मैं और मेरी फ्रेंड थे, हम लोग कर रहे थे डांस. तो एक स्टेप था जिसमें हमें एक दूसरे की तरफ देखना था, सैड एक्सप्रेशन बनाना था ऑब्वियसली, और फिर वापस जाना था. अब वो स्टेप ना हम प्रैक्टिस में हमेशा हंस पड़ते थे देख के एक दूसरे को, और हमने स्टेज पे भी नहीं किया. ऐसे से गाने पे हम हंस पड़े, वो भी स्टेज पे.
अरे हो जाता है यार.
होता है यार, नहीं रोका जाता.
हो जाता है ऐसा मैंने ड्रामेटिक्स क्लब में भी कर रखा है. बहुत ही सीरियस सीन था वो, मैंने अपने लौंडे को डांटना था. मतलब उस सीन में वो लौंडा था मेरा, मैं बाप का रोल कर रहा था, वो मेरा लौंडा था. हाँ,
अच्छा.
और मेरे को उसको डांटना था कि तो कुछ कर क्यों नहीं रहा जो भी है, एक तू रुक कभी, मैं कुछ नहीं कि इसको फोन लगा दो, तेरे टीचर को फोन लगा दो या कुछ. ठीक है, तो अब मैंने लगाया और फोन मैंने बनाया आई कार्ड को. ठीक है, और आई कार्ड मैंने कान पे लगाया और आई कार्ड स्लिप हो गया और वो सीधा जमीन पर गिर गया और हम हंस पड़े.
नाइस.
हाँ,
एनीवे
होता है यार, तीर्थ तो यार ऐसी ना सीरियस चीजों में हंसी आती है,
हाँ।
जब बोला जाए कि नहीं हंसना है
नहीं
आ जाती है,
आ जाती है, आ जाती है, सही बात है ये।
स्पेशली जब वो दूसरा बंदा आपका दोस्त हो और आप इस चीज को डिस्कस कर चुके हो कि नहीं हंसना है
हाँ।
और आती है।